तफसीर के आयत नंबर 78 से लेकर 81 तक। अब यहाँ पे सबर करने के लिए और इस्तकामत इख्तियार करने के लिए जो है वो तदबीर बताई जा रही है, नमाज के एहतमाम की ताकीद की जा रही है, और कुर्बे हिजरत की तरफ इशारा भी है और इसके लिए दुआ की तलकीन भी है। अब आप देखें कि मक्की दौर में जो है वो बड़े सख्त हालात हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताकीद की है कि आपने जो है सिराते मुस्तकीम पर जमना है और उसके लिए जो है वो नमाज से मदद लेनी है। आकिमिस सलाता लिदुलूकि शम्सी इला गसकिल लैली व कुरान अल फज्र इन कुरान अल फज्री का न मशहूदा। यह आयत अक्सर जो है लोग इमाम कुरान में उसमें नमाज में भी पढ़ते हैं, बड़ी अहम आयत है। यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अकीम सलाता के ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज कायम कर। ये दुलू की शमसी, यहाँ पे दुलू का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, इसका रूट है दाल लाम काफ, इसके मानी है ढलना, ढलना सूरज का गुरूब होना, उसके लिए ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप जो हैं वो जवाले आफताब से नमाज कायम करें, और याद रखें कि सूरज के जवाल जो है उसके दर्जे क्या होते हैं। नंबर एक के जब वो ढलना शुरू होता है फिर वो नीचे की तरफ झुकता है यहां तक कि वो बिल्कुल गायब हो जाता है। तो जब बिल्कुल अभी सूरज को जब जवाल आना शुरू होता है तो वो जुहर का वक्त होता है, फिर और जो है वो और ज्यादा जब वो ढलता है नीचे की तरफ झुकने लगता है तो असर का वक्त हो जाता है, और जब वो उफक से गायब हो जाता है तो मगरिब की नमाज का वक्त हो जाता है। तो यहां पर जो है नमाज के औकात बताए जा रहे हैं कि अकीम सलाता नमाज का एहतमाम करो, ले दुलू की शमसी जवाले आफ्ताब से लेकर। तो अब जवाले आफ्ताब से फिर कितने इसमें औकात शामिल हो गए, इसमें जो है वो जोहर भी शामिल हो गई, असर भी शामिल हो गई, मगरिब भी शामिल हो गई, साथ ही कहा इला गसकिल लैली रात के अंधेरे तक। और गसक जो है गैन सीन काफ जो है इसका मतलब है अंधेरा तारीकी, शफक गायब हो जाने के बाद का अंधेरा, रात का इब्तदाई हिस्सा। तो रात जब पूरी तरह तारीक हो जाती है तो फिर इसके मानी है इशा का वक्त। तो बाज लोग इशा का इब्तदाई वक्त मुराद लेते हैं और बाज लोग इसे कहते हैं कि इशा का आखिरी वक्त, जब और ज्यादा रात जो है वो गुजर जाती है। तो जवाले आफ्ताब से लेकर रात के अंधेरे तक आप नमाज जो है ये कायम करें। अब आप देख लें कि एक तरफ मुश्किलात की बात है, मक्का वालों की के सताने की बात है, और इस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तकामत की बात है, और दूसरी तरफ इन हालात में जो है वो नमाज का हुक्म दिया जा रहा है। और नमाज कब से पढ़नी है, ले दुलू की शमसी, और दुलू के मानी आफ्ताब के ढलने के हैं, और कब तक या गसक लैली रात की तारीकी तक। तो आफ्ताब के ढलने के बाद कौन सा वक्त आ जाता है, जोहर और असर की नमाज। तो बाज लोगों ने ले दुलू की शम से मुराद जो है जोहर और असर मुराद ली है, और इला गसक लेल से मुराद जो है मगरिब और इशा की नमाज ली है, कि जब अंधेरा फैलता है तो बिल्कुल शुरू में मगरिब और फिर ज्यादा फैल जाए तो इशा की नमाज शुरू हो जाती है। वह कुरान अल फज्र, और कुरान अल फज्र से मुराद जो है वो फजर की नमाज ली है, और मुफस्सरीन ने कुरान अल फज्र से मुराद जो है वो फजर की नमाज में कुरान की तिलावत तिलावत मुराद ली है। मुफस्सरीन कहते हैं कि फजर की नमाज में जो है वो कुरान की तवील किरात की जाती है। कुरान से मुराद क्या है? फजर। और कुरान उल फजर से मुराद क्या है? फजर की नमाज। और फजर की नमाज में कुरान की लंबी तिलावत। तो मुफस्सरीन कहते हैं मुख्तसिर तौर पर इस आयत के हिस्से में पांचों फर्ज नमाजों का जिक्र आ जाता है, दुलूकी शम्स से, जोहर और असर, गसक लेल से जो है वो मगरिब और इशा, व कुरान अल फजर से मुराद फजर। और फजर का कुरान क्या है? फजर की नमाज में कुरान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज में तवील किरात करने का तरीका इख्तियार किया, इसलिए इन्ना कुरान अल फजरी का ना मशहूदा, क्योंकि कुरान फजर मशहूद होता है कि फजर की नमाज में जो कुरान की तिलावत की जाती है तो फरिश्ते उसमें गवाह बनते हैं। और ये बात जो है हमें अहदीस से पता चलती है। वैसे तो फरिश्ते हर नमाज और नेकी के गवाह बनते हैं, लेकिन यहाँ पे खास तौर पर नमाज फजर की किरात पर इनकी गवाही का जिक्र किया गया है। और हमें अहदीस से भी ये बात पता चलती है कि जो है वो फजर की नमाज में जो फरिश्ते हैं उनकी ड्यूटी जो है वो तब्दील होती है। फजर की नमाज में और इसके साथ जो है वो असर की नमाज में दिन के फरिश्ते और रात के फरिश्ते जो हैं वो फजर की नमाज में इकट्ठे होते हैं। सही बुखारी की रवायत है कि रात वाले फरिश्ते जब अल्लाह के पास जाते हैं तो अल्लाह ताला इनसे पूछता है, हालांकि वो खूब जानता है कि तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा। फरिश्ते कहते हैं कि जब हम इनके पास गए थे उस वक्त भी वो नमाज पढ़ रहे थे, और जब हम इनके पास से आए हैं तो उन्हें नमाज पढ़ते हुए ही छोड़कर आए हैं। तो ये है इन्ना कुरान अल फजरी काना मशहूदा, कि कुरान फजर मशहूद होता है। और आप देख लें कि पांचों नमाजों में जो किरात की जाती है तो फजर की नमाज की किरात जो है वो सबसे ज्यादा तवील होती है, लंबी किरात होती है उसमें। और मशहूद के बानी आपको समझ आए, हाजिर किया गया। और सलातुल फजर में फरिश्ते हाजिर होते हैं। बुखारी की रवायत है सलात बा जमात अकेले पढ़ने से 25 गुना ज्यादा फजीलत रखती है, और सुबह की नमाज के वक्त रात और दिन के फरिश्ते इकट्ठे हो जाते हैं। वमिन लैली फतहज्जद बिही नाफिला, और रात को तहज्जुद पढ़ो ये तुम्हारे लिए नफल है। नाफिला तलक, ये आपके लिए नफल है। असा यब असा का रब्बू का मकाम महदूदा, बईद नहीं कि तुम्हारा रब तुम्हें मकाम महमूद पर फायज कर दे। अब आप देखें कि यहाँ पे फतहज्जत का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। इसका तहज्जत जो है ये लफ्ज जो है आप उर्दू में भी कसरत से इस्तेमाल करती हैं। इसका रूट क्या है? हा जीम दाल। और इसके मानी है सोना भी और जागना भी, और ये रात के काम है ना। ये लफ्ज ज़विल अज़दाद में से है, सोना जागना दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसके लफ्जी मानी है नींद तोड़ कर उठना, जैसे सोया हुआ था अब नींद को तोड़ा तो इंसान जब उठे। तो अब रात के वक्त जो तहज्जुद पढ़ना है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नफल है। फरमाया असा अय्यब असा रब्बु का मकाम महदूदा, बेही नहीं कि तुम्हारा रब तुम्हें मकाम महमूद पर फायज कर दे। अब आप देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तहज्जुद जो है, मैंने जैसे कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तहज्जुद नफल है, लेकिन असल बात क्या है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तहज्जुद भी इसी तरह फर्ज थी जिस तरह 5 नमाजें फर्ज थी, अलबत्ता उम्मत के लिए तहज्जुद की नमाज फर्ज नहीं है। और बात कहते हैं कि नाफिला के मानी जायद के हैं, और ये तहज्जुद की नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी जो है वो रफ़े दर्जात के लिए एक जायद चीज थी। तो एक राय ये है कि आप पर फर्ज थी और उम्मत के लिए नफल, और दूसरी राय ये है कि आप पर भी ये नमाज जो थी ये जायद थी और आपके लिए भी ये नफल का दर्जा रखती थी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी इसको जो है वो फर्ज और वाजिब की तरह जो है वो अदा किया। और नफल नमाजों में सबसे अफजल नमाज जो है वो तहज्जुद की नमाज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के वक्त जो है वो कितनी रकते पढ़ते थे? सही बुखारी की रवायत है, हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा रावी हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमदान या गैर रमदान में कभी 11 रकअत से ज्यादा नहीं पढ़ते थे, और इन 11 रकतों में जो है वो 3 रकते वितर की होती थी और बाकी 8 तहज्जुद की। और सही मुस्लिम की हमें एक रवायत मिलती है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में 13 रकते पढ़ते थे जिनमें वितर भी शामिल है, और 2 रकते फिर फजर की सुन्नतों की, क्योंकि सुन्नत जो है फजर सुन्नत जो फजर में पढ़े जाते हैं रात की नमाज में, उधर से चूंकि कयामुल लैल अगर रमदान में किया जाए तो कयामुल लैल खत्म होता है तो उसके साथ ही जब फजर का वक्त शुरू होता है तो फजर की सुन्नतें जो है वो अदा की जाती हैं। तो बहरहाल हमें 11 रकते भी मिलती हैं, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आम रूटीन की आदत पता चलती है, सहाबा कहते हैं कि तहज्जुद की नमाज में आप 8 रकते अदा किया करते थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज तहज्जुद कैसे अदा करते थे? इब्तदा में आप 2 रकत हल्की मुख्तसर किरात के साथ, फिर बाकी रकतों में किरात भी तवील करते और रुकू और सजदा भी तवील होता, और बसा औकात तो इतना लंबा हो जाता था कि बहुत ज्यादा, और कभी कुछ कम भी होता था। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मकामे महमूद से क्या मुराद है? ये वो मकाम है जो कयामत वाले दिन अल्लाह ताला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता करेगा, और इस मकाम पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाते उज़्मा करेंगे जिसके बाद लोगों का हिसाब किताब जो है वो किया जाएगा। असायब असा रब्बु का मकाम महदूदा के बईद नहीं कि तुम्हारा रब तुम्हें मकाम महमूद पर फाइज कर दे। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया और आखरत में ऐसे मकाम और मर्तबे पर पहुंचाए जहां पर हर तरफ से रसूल अल्लाह पर हम्द की बारिश हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती एक काबिले तारीफ हस्ती बनकर रहे। दुनिया में बहसियत पैगंबर के मुखालिफिन ने जो है वो आप पर झूठे इल्जाम लगाए, आपको बदनाम करने की कोशिश की, आपको गालियां दी। अब यहाँ पे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि वो वक्त दूर नहीं जब दुनिया जो है वो आपकी तारीफों से गूंज उठेगी, दुनिया में भी और आखरत में भी। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कयामत के दिन मकामे शिफात पर खड़ा होना भी इसी महमूदियत का एक दर्जा है। मकामे महमूद से मुराद फिर ऐसा मर्तबा पता चला जब सब लोग आपकी हम्दो सना करने लगेंगे। और कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया ही की जिंदगी में, जो आपकी आखिरी जिंदगी थी, वहां ये मकाम और मर्तबा अता किया गया कि लोग आपकी हम्द बयान करते थे। फिर दूसरा मर्तबा जन्नत में एक बुलंद मकाम है जिसका नाम ही मकामे महमूद है, वो आपको अता किया जाएगा। और तीसरी इसकी तारीफ ये भी की जाती है कि कयामत के दिन की हौलनाकियां देखकर जब लोग घबरा रहे होंगे और चाहेंगे कि अल्लाह के हुजूर इनकी कोई सिफारिश करे, तो उस वक्त जो है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो लोगों की सिफारिश करेंगे, जो कि मकामे शफात है। और हमें एक हदीस से जो है वो ये बात भी पता चलती है। अब आप देखिए, अजान के बाद जो आप दुआ पढ़ती हैं उसमें भी आप रसूल अल्लाह के लिए मकामे महमूद पर खड़े होने की दुआ करती हैं, तो ये खास मकाम है जो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया जाएगा। लेकिन अजान के बाद दुआ में भी हम अल्लाह से दरख्वास्त करते हैं कि आपको वो बुलंद और आला मकाम जो है वो अता किया जाए। ये आयत नंबर जो 80 है, आयत नंबर 80, इसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो हिजरत के वक्त दुआ मांगी है। और आप भी अगर किसी जगह से दूसरी जगह जा रही हैं, आप भी किसी जगह को छोड़ रही हैं, निकल रही हैं, तो हमारी भी ये दुआ होनी चाहिए कि जहां से भी निकलें खैर से निकलें, जहां भी जाएं खैर का जो है वो साथ दें, तो हक और सदाकत उसकी खातिर निकलना और उस पर जमे रहना, ये है असल बात। और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ने फरमाते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, फिर आपको हिजरत का हुक्म हुआ, तो ये सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर 80 जो है वो नाजिल हो गई। फकुर रब अदखिलनी मुदखल सिदकिऊ व अखरिजनी मुखरज सिदकिऊ व जअलनी मिन लदुन का सुल्तानन नसीरा। और ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करो कि परवरदिगार मुझको जहां भी तू ले जा सच्चाई के साथ ले जा, और जहां से भी निकाल सच्चाई के साथ निकाल, और अपनी तरफ से एक इक्तदार को मेरा मददगार बना दे। अली मिल्ला दुन का सुल्तान नसीरा, के ये जो सुल्तान नसीरा है, मुफस्सरीन कहते हैं इसके मानी है कि तू खुद मुझे इक्तदार अता कर, तू हुकूमत को मेरा मददगार बना दे, या मुझे ऐसी ताकत दे कि मैं दुनिया के बिगाड़ को दुरुस्त कर सकूं, बेहयाई के सैलाब को रोक सकूं, तेरे कानून अदल को जारी कर सकूं। ये है इकतदार, कि ये नहीं कि दुनिया प्रस्ती में मुब्तिला हो जाए, कि कुर्सी मिल जाए और उसके बाद इंसान जो है फिर अल्लाह को भूल जाए। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि जब वोट मांगते हैं तो इस्लाम का जिक्र करते हैं, और जब इलेक्शन में जीत जाते हैं तो उसके बाद जो है फिर अल्लाह को भूल जाते हैं। इससे फिर क्या बात पता चलती है कि मक्का से निकलते वक्त, मदीना में दाखिल होते वक्त आपने जो आपको ये दुआ सिखाई गई। बास कहते हैं कि इसका मतलब है मुझे सच्चाई के साथ मौत देना, यानी दुनिया से जब निकालना तो सच्चाई के साथ, और सच्चाई के साथ कयामत वाले दिन उठाना। बास कहते हैं कि मुझे कब्र में सच्चा दाखिल कर और कयामत के दिन मुझे कब्र से सच्चाई के साथ उठा, उससे निकाल। और मुफस्सरीन कहते हैं कि जैसे इसमें तमाम बातें शामिल हो जाती हैं, आम जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह जो है वो घर बदल रही हैं, आप एक स्टेट से दूसरी जगह जा रही हैं, कंट्री से दूसरी जगह जा रही हैं, आप कहीं भी जा रही हैं, तो उस वक्त हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये दुआ मांगनी चाहिए। बड़ी खूबसूरत दुआ है। वकुल जाल हकु वजहकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका, और ऐलान कर दो कि हक आ गया और बातिल मिट गया, बातिल तो मिट ही जाने वाला है। हदीस में आता है फतह मक्का के बाद जब रसूल अल्लाह खाना काबा में दाखिल हुए तो वहां 360 बुत थे। आपके हाथ में एक छड़ी थी, आप छड़ी की नोक से इन बुतों को मारते जाते थे और ये आयत पढ़ते जाते थे, जा अलहकु वजहकल बातिल, और ये वाली भी, वजा अलहकु वमा युबदिउल बातिल वमा युईद, इसे सही बुखारी ने रवायत किया है। तो आप देख लीजिए कि मुसलमान जो हैं वो मक्का को छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत कर रहे हैं, और अल्लाह ताला जो है वो ऐलान कर रहे हैं कि हक आ गया और बातिल मिट गया। बातिल तो मिट ही जाने वाला है। तो यहाँ पे जहाका का लफ्ज जो है ये इस्तेमाल किया गया है, जे हा जो चश्मी हा और काफ इसका रूट है, और इसके मानी है किसी का निकल जाना, मिट जाना, जैसे झागनी होती जो बैठ जाती है, कोई चीज गुम हो जाए, खत्म हो जाए, उस वक्त भी ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो जो बातिल है वो झाग की तरह जो है वो बैठ जाने वाला है, जहू का है, खसो खाशाक की तरह, जैसे पानी के ऊपर जो है वो तिनके नहीं है जो बह कर चले जाते हैं, तो बातिल बिल्कुल इसी तरह जो है वो मिट जाने वाला है और हक जो है वो कायम रहने वाला है। तो दरअसल यहाँ पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है और बताया जा रहा है कि ये कुफर, शिर्क, निफाक, हसद, कीना और इनकी जो बुराइयां हैं ये बिल्कुल बातिल की तरह जो है वो मिट जाएंगी, झाग की तरह मिट जाएंगी, बैठ जाएंगी, ये बातिल है ना, और जो हक है वो कायम रहेगा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा में जो है वो तस्वीरें देखी, इब्राहिम अलैहि सलाम की, इस्माइल अलैहि सलाम की, जिनके हाथों में तीर थे। आपने फरमाया अल्लाह की कसम उन्होंने कभी तीरों से फाल नहीं ली थी। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बुखारी की हदीस है, और एक और बुखारी की हदीस है कि जब रसूल अल्लाह बैतुल्लाह में दाखिल हुए तो देखा वहां इब्राहिम अलैहि सलाम और बीबी मरियम की तस्वीरें हैं। आपने फरमाया कुरैश के काफिरों को क्या हो गया है, वो सुन तो चुके हैं कि जिस घर में मूर्तें हों, तस्वीरें हों, वहां फरिश्ते दाखिल नहीं होते। ये इब्राहिम की तस्वीर है, इनको क्या हुआ, भला वो 500 से फाल लिया करते थे। तो अब वहां पे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो फतेह मक्का के मौके पर वहां पे जो कुफरिया और शिरकिया काम हो रहे थे आपने उनको जो है वो खत्म कर दिया। तो हक आ गया और बातिल जो है वो चला गया। तो इससे ये बात पता चलती है कि एक मुसलमान जिस जगह है, जिस घर में है, जिस ऑफिस में है, जिस इदारे में है, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वहां से बुराई को खत्म करे और नेकी जो है उसको फैलाए। और मुख्तलिफ अपने कामों के लिए, मुख्तलिफ मकासिद के लिए हमें ये आयत नंबर 80 जो है वो याद करनी चाहिए, और इसका जो एंड है वज 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 अली मिन लदुनका सुल्तान नसीरा, ये बहुत ही अहम जो है वो दुआ का हिस्सा है। पूरी दुआ ही बहुत अहम है, इसको आप याद करें, इससे हक का गलबा होता है और दुश्मन के निर्गे में जो लोग दुश्मन के हिसार में हैं वो उससे बच सकते हैं। जैसे यहाँ पे रहते हुए हम और हमारे बच्चे जो हैं वो बुराइयां, दुश्मन और कुफर और शिर्क जो है उसके जो है वो जद में हैं, तो अपने आप को कुफरिया और शिरकिया बातों से बचाने के लिए, जाहिरन और बातन अपने आप को बेहतरीन मुसलमान बनाने के लिए ये मुफीद दुआ है। आप खुद भी याद करें, अपने बच्चों को भी बताएं, दोस्तों को भी बताएं, और इसको पढ़ना अपनी जिंदगी का मामूल बना लें। और सही बात है कि स्याही के चली जाती है, रोशनी आ जाती है, झूठ मिट जाता है, सच जो है वो कायम रहता है। और ये क्या है कि हक आ गया और बातिल चला गया, मुफस्सरीन कहते हैं हक है कुरान इस्लाम और बातिल है कुफर शिर्क और जो भी कुफरिया काम है। सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 82, اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. فرمایا اور ہم اس قرآن کی تنزیل کے سلسلے میں جو کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا کسی اور چیز میں اضافہ نہیں کرتا. اب آپ دیکھیے کہ پچھلی آیت میں آپ نے پڑھا کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, باطل تو مٹنے ہی والا ہے اور حق جو ہے اس کا کہاں سے پتا چلتا ہے؟ قرآن سے. قرآن کیا ہے؟ پیچھے آپ نے پڑھا کہ قرآن جس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ راستہ جو ہے وہ اقوم ہے, وہ سب سے بہتر ہے, معتدل ہے, افراط اور تفریط سے پاک ہے. اور اہل مکہ قرآن کو جھٹلاتے تھے. اب یہاں پہ ان پر اظہار افسوس کیا جا رہا ہے, ان پر ملامت کی جا رہی ہے. اللہ رب العزت اعلان کر رہے ہیں وَنُنَزِّلُ اور ہم نازل کرتے ہیں اور ہم اتارتے ہیں, من القرآنی قرآن میں سے, کہ قرآن میں اللہ کے جو احکامات نازل ہوتے ہیں, جو آیات اور سورتیں نازل ہوتی ہیں وہ کیا ہیں؟ نہیں وہ شفاؤن مگر شفا ہے. فرمایا ما ہوا شفاؤن, وہ جو شفا ہے, وہ رحمتن اور رحمت ہے. اچھا شفا کس کے لیے ہے؟ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے اور روحانی بیماریوں کے لیے بھی قرآن شفا ہے. وہ رحمتن اور رحمت ہے للمؤمنین, ایمان لانے والوں کے لیے. تو جو لوگ قرآن پر ایمان لاتے ہیں, اسے قبول کرتے ہیں, تو ان کے لیے قرآن جو ہے وہ شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. آپ نے جب سورت فاتحہ کو پڑھا تھا تو وہاں آپ نے پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو ہے وہ علاج بھی کیا تھا قرآن پڑھ کر, کیونکہ کسی بستی کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا تھا. اور صحابی تھے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ, اور ان کے ساتھ کچھ اور صحابی تھے, وہ سفر پر گئے ہوئے تھے اور انہوں نے قرآن پڑھ کر جو ہے وہ ان کی بیماری کا علاج کیا تھا. تو قرآن جو ہے اس سے شفا ملتی ہے, تمام قلبی اور جسمانی بیماریوں سے مکمل شفا ملتی ہے. اس لیے کہ پیاری بہنوں, یہ اللہ نے فرمایا ہے اور اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. سر درد ہو رہا ہے, کوئی درد ہے, پریشانی ہے, تکلیف ہے, تو قرآن کی جو ہے وہ تلاوت کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فہم قرآن کی جو دعا سکھائی ہے وہ آپ یاد کر سکتی ہیں. تو اس میں بھی جو ہے وہ جتنے بھی تکلیفیں ہیں, پریشانیاں ہیں, مصیبتیں ہیں, ان کا علاج جو ہے وہ قرآن کو بتایا گیا ہے. اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک مادن فی حکمک عدل فی قضاءک اسألوك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. تو اس دعا میں بھی جو ہے وہ یہی بات مانگی گئی ہے کہ اللہ تو اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے, میرے سینے کا نور بنا دے, میری جو میرے غم ہیں ان کو دور کرنے کا, میری جتنی پریشانیاں ہیں ان کو ہٹانے کا ذریعہ بنا دے. تو یہاں پر بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اہل مکہ تم قرآن کا انکار کرتے ہو, اور قرآن یہ ایسی کتاب ہے جو اللہ نے نازل کی ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے اس میں शिफा है और उनके लिए कुरान रहमत है। तुम इसे मुसीबत समझते हो लेकिन उनके लिए कुरान जो है वो रहमत है। तो इससे हमें क्या बात पता चलती है कि कुरान मजीद जो है इसे पढ़कर दम किया जा सकता है, इसे पढ़कर इलाज किया जा सकता है, और जो लोग इस पर अमल करते हैं तो सारी मुश्किलात और परेशानियों का जो है, सारी मुसीबतों का जो है वो कुरान के जरिए जो है वो इलाज हो सकता है। वला यजीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा, और नहीं इजाफा होता जालिमों के लिए मगर खसारे में। तो यहाँ पर जो है ये हकीकत बताई जा रही है कि जो लोग कुरान का इनकार करते हैं तो कुरान का इनकार करके वो अपने लिए नुकसान करते हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो जो लोग कुरान पर अमल नहीं करते, इसे खोलते नहीं हैं, इससे अपनी जिंदगी के जहालत के अंधेरों को दूर नहीं करते, तो दरअसल वो अपने नफ्स पर जुल्म कर रहे हैं। वला यजीदु ज़ालिमीना, ये जालिम है और नहीं ये इजाफा करते अपने लिए मगर खसारे का। तो कुरान का झूठलाना इनके लिए महरूमी का जरिया बन जाता है। फिर इसके बाद फरमाया आयत नंबर 83 और 84, इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान जो है इंसान के बारे में तारुफ करवाया है कि इंसान जो है वो उसकी आदत क्या है, इंसान की फितरत क्या है, वो करता क्या है। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान की हालत को बयान किया है कि वो कितना जल्दबाज है, कितना नशुकरा है, उसकी अमली जिंदगी में क्या रविश होती है और हकीकत में उसकी रविश जो है वो क्या होनी चाहिए। और खास तौर पर यहाँ पे उस इंसान का जिक्र किया जा रहा है जो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का मुनकिर है, जो काफिर है, जो नूरे ईमान से महरूम है। ऐसा ही इंसान दरअसल अल्लाह का बड़ा नाशुकरा है। फरमाया वाइजा अन अमना अल इंसानी, कि जब हम इंसान को नेमत अता करते हैं, जब हम इंसान को नेमत देते हैं आरादा, तो उसकी पहली रविश क्या होती है कि वो मुंह फेर लेता है। मुंह फेरने से मुराद क्या है कि नेमते पाकर वो अल्लाह का नशुकरा होता है, नेमते लेकर नशुकरी करता है, अल्लाह को याद करना भूल जाता है। ये है उसकी पहली रविश कि नेमते पाकर उसे होना क्या चाहिए था, अल्लाह का शुक्रगुजार बनना चाहिए था, लेकिन नेमते पाकर वो अल्लाह के अहकामात से मुंह मोड़ता है, करवट फेरता है। दूसरी उसकी रविश क्या है, वना आ बिजानिबी। यहाँ पे ना आ का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, इसका रूट है नून अलिफ या, और इसके मानी है तकब्बुर की वजह से किसी से परे होना, दूर रहना, रूगर्दानी करना। तो ऐसा शख्स जो है वो अल्लाह की नेमतें पाकर जो है वो पीठ मोड़ लेता है, दूर हो जाता है। तो यहाँ पे दो रविश है, पहली है आरादा, और आरादा जो है इसके माने क्या है, इसके माने ये हैं कि ऐसा इंसान जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकाम से मुंह मोड़ता है, कैसे, नफरत करता है, बेजारी का इजहार करता है। फिर दूसरी उसकी रविश क्या है, वना, और वो गुरूर के अंदाज में पहलू बदलता है, बेजानेब ही, जीम नून बा जो है ये जानेब और पहलू को कहते हैं, तो करवट फेर लेता है, मोंडे फेर लेता है। तो ये है इंसान का अजीब हाल कि नेमते पाकर उसको सर झुकाना चाहिए था लेकिन वो अकड़ने लगा और सरकशी करने लगा। देखिए दरख्त पर जब फल लगता है तो दरख्त की शाखें झुक जाती हैं। इंसान का अजीब हाल है कि जब उसको नेमतें मिलती हैं तो झुकने की बजाय वो अकड़ने लगता है, अल्लाह की तरफ रुजू करने की बजाय अल्लाह की अतात से मुनकिर हो जाता है, अल्लाह का इनकार करता है। वाइजा मसाहु शर्रू, और जब उसे जो है वो मुसीबत पहुंचती है, काना यऊसा, तो मायूस होने लगता है। अब दूसरी उसकी हालत क्या है कि उधर जरा बीमारी आई, जॉब चली गई, कोई मुसीबत हो गई, बच्चों की कोई आजमाइश आ गई, खानदान के अंदर कोई आजमाइश आ गई, और जिंदगी जो है वो आजमाइश ही का नाम है, जिंदगी एक इम्तहान है, इम्तहान है जिंदगी। तो ऐसा नशुकरा इंसान तकलीफ के पहुंचने पर अल्लाह की रहमत से बिल्कुल ना उम्मीद हो जाता है। वैजा मस्सहु शर्रु काना यऊसा, या हमजा सीन जो है इसके मानी है मायूस होना। तो अल्लाह की रहमत से ये बिल्कुल मायूस हो जाता है। फरमाया कुल, कह दीजिए कुल्लु यामलू, के कुल जो है इसके मानी है हर हर एक, यामलू अमल करता है, अला शाह के लाते अपने तरीके के मुताबिक। यहाँ पे शाह के लाते ही आपको एक बड़ा सा मुश्किल लफ्ज नजर आ रहा है, लेकिन है बड़ा आसान। आप इसका रूट निकालिए, शीन काफ लाम, और शीन काफ लाम जो है इसके मानी है शक्लो सूरत, तरीका, जहनी सांचा, सोच, उसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, तौर तरीका, ढब ढंग। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि हर शख्स जो है वो अपनी सोच के मुताबिक अमल करता है, वो अपने तरीके, अपने रंग ढंग के मुताबिक अमल करता है। जैसे आप किसी को जाहिरी तौर पर देखती हैं तो आप कहती हैं कि उसकी शक्ल जो है वो कैसी है, और यहाँ पर बात हो रही है कि अमल की शेप कैसी है, अमल का ढंग क्या है, अमल की शक्ल कैसी है। इस सिलसिले में मैं आपको जो है वो दो मिसालें देती हूँ। जैसे एक शख्स है, वो सदका खैरात करता है और वो एलानिया करता है, उसकी नीयत क्या है, वो चाहता है कि दूसरों को भी तरगीब हो और दूसरे लोग भी देखकर सदका करें। दूसरा शख्स है जो सदके को छुपा कर देता है, पोशीदा देता है, उसका मकसद ये होता है कि रियाकारी ना हो, दिखावा ना हो, नुमाइश ना हो। अब देखें कि दोनों की नीयत ठीक है, लेकिन तरीका और अंदाजे फिक्र अलग अलग है। तो ये है मानी कि हर शख्स जब अमल करता है तो उसका तौर तरीका अलग होता है, अपना होता है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि एक दिन आप रात के वक्त निकले, आपने देखा कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह नो मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन तिलावत और किरात आहिस्ता आवाज में कर रहे थे, कुरान बहुत आहिस्ता पढ़ रहे थे। फिर आप थोड़ा और आगे चले, आपने उमर फारूक रजी अल्लाह को देखा, वो बुलंद आवाज से कुरान पढ़ रहे थे। अब जब दोनों नमाज से फारिग हुए तो आपने अबू बकर से पूछा है, अबू बकर तुम इतने आहिस्ता आहिस्ता किरात क्यों कर रहे थे? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा रब बहरा नहीं है कि मैं चिल्ला कर पढूं, और मैं जिससे बातें कर रहा था यानी अल्लाह से, वो तो सुन रहा था ना। उमरे फारूक रजी अल्लाह अन्हु से पूछा कि आप इतनी बुलंद आवाज से क्यों पढ़ रहे थे? कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं शैतान को भगाता था, भगाता हूं, और सोने वालों को जगाता हूं। आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की तारीफ बताई, आपने दोनों की तारीफ की। अब आप देखें, पढ़ दोनों नमाज रहे हैं, अमल दोनों का मुख्तलिफ है, और असल बात क्या है कि नीयत दोनों की बड़ी अच्छी है, सोच का अंदाज अलग अलग है, इसी को शाकिला कहते हैं। और बाज उलमा ने शाकिला लफ्ज के मानी जो है वो नीयत के भी लिए हैं कि नीयत। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों से कह दीजिए हर एक अपने तरीके पर अमल कर रहा है, फर्रब्बुकुम आलमु बिमन हुवा अहदा सबीला, अब ये तुम्हारा रब भी बेहतर जानता है कि सीधी राह पर कौन है। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो है वो आलमु अफलु के वजन पर है, सुपरलेटिव डिग्री है, ज्यादा इल्म रखने वाला। इसी तरह जो आहदा है, आहदा जो है ये भी सुपरलेटिव डिग्री है और ज्यादा हदायत पर, लेकिन ये आपको आलमु या अफलु के वजन पर नजर नहीं आ रहा आहदा। इसकी वजह यह है कि अरफे हर्फे इल्लत जब आ जाता है ना, तो जो शेप होती है ना सुपरलेटिव डिग्री की, आराब का जो अंदाज होता है वो फर्क हो जाता है। जैसे पीछे मैंने आपको बताया था खैर, ये भी सुपरलेटिव डिग्री है, इसी तरह आधा, ये भी सुपरलेटिव डिग्री है, तो ज्यादा हदायत वाला। यहाँ पे आपने दो जो है इसम तफजील पढ़े, आलमू और आधा, तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि कौन जो है वो सीधी राह पर है। इसके मानी क्या है? दरअसल के हर शख्स अपने अपने तरीके पर अमल कर रहा है। मानी क्या है कि एक तरफ मोमिन है जो अमल करने वाले हैं, दूसरी तरफ काफिर है जो अमल करने वाले हैं। मोमिन अपनी नियत और अपने इल्म के मुताबिक अमल कर रहे हैं, और काफिर अपनी अकल के मुताबिक अमल कर रहे हैं। लेकिन दोनों में से ज्यादा ठीक और दुरुस्त रास्ते पर कौन है, ये अल्लाह खूब जानता है। फरबकुम आलवु विमन हुआ अहदा सबीला, अल्लाह ज्यादा बेहतर जानता है कि कौन जो है वो सीधे रास्ते पर है, कौन जो है वो सिराते मुस्तकीम जो है वो उसको पाता है। इससे क्या बात पता चलती है कि जब भी कोई अमल किया जाए तो उसके अंदर इखलासे नीयत होनी चाहिए, और हुस्ने अमल किया जाए, सही तरीका हो, अल्लाह की रजा के लिए हो, और बुरी नीयत और बुरे आमाल जो हैं वो इंसान को के अमल को जाया कर देते हैं। फिर आप देखिए कि आयत नंबर 85 है, 85, बुखारी और मुस्लिम मुस्नद अहमद की रवायत है, रावी हैं अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह नो, कि यहूद मदीना ने रसूल अल्लाह से रूह के बारे में सवाल किया तो ये आयत नाजिल हुई। इब्ने इसहाक ने रवायत की कि यहूद मदीना ने कुरैश को कहला भेजा कि वो मोहम्मद से अहले कहफ, जुलकरनैन और रूह के बारे में पूछें, और अगर वो दो के बारे में बताएं और तीसरी चीज के बारे में खामोशी इख्तियार करें तो वो नबी है। चुनाचे अल्लाह ताला ने सूरत अल कहफ नाजिल की, जिसमें असहाबे कहफ और जुलकरनैन का वाकया है, और ये आयत नाजिल की जिसमें रूह का तذکرہ है। फरमाया वयसअलूनका अनिर रूह, ये लोग तुमसे रूह के बारे में सवाल पूछते हैं। कुल कह दीजिए अर रूह मिन अम्रे रब्बी, ये रूह मेरे रब के हुक्म से आती है। रूह जो है इसके क्या मानी है? इसके एक मानी है अजीम फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम, इसके दूसरे मानी है वो पोशीदा चीज जो पूरे जिस्म इंसानी में फैली हुई है, जिसकी वजह से इंसान का जिस्म जो है वो जिंदा रहता है। तो जिस्म के अंदर जो रूह होती है, दूसरे इसके ये मानी है। फिर आप देखिए कि रूह जो है इसके एक और मानी भी है, और रूह के मानी है कुरान वही। तो रूह के एक मानी वही के भी है, वही और कुरान के, और यहां पर जो है वो मानी वही या वही लाने वाला फरिश्ता है। ये लोग तुमसे रूह के मुतल्लिक पूछते हैं, कुल कह दीजिए अर रूह मिन अम्रे रब्बी, कि ये रूह मेरे रब के हुक्म से आती है। तो रब के हुक्म से जो रूह आती है, तो इसके मानी क्या है? इसके मानी है कि ये जो वही नाजिल होती है, ये जो फरिश्ता आता है, तो ये अल्लाह के हुक्म से आता है। जो भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इल्म था, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम वही के जरिए आते, जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से आते और अल्लाह के हुक्म से वही का इल्म आप तक पहुंचाते। तो यहां इसके यही मानी है। फिर फरमाया वमा ऊती तुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला, मगर तुम लोगों ने इल्म से कम ही हिस्सा पाया है। यहां पर जो है ये बात बताई जा रही है कि उनके पास जो था बहुत ही कम इल्म था, बहुत थोड़ा इल्म था। तो रूह की हकीकत का मालूम करना जो है, उन्हें उसकी कोई जरूरत भी नहीं थी, उन्हें रूह की हकीकत समझ में भी नहीं आ सकती थी। तो यहाँ पर यही बात बताई जा रही है कि जो भी वही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होती है तो वो अल्लाह के हुक्म से होती है, और उनको इस हकीकत का कुछ भी अंदाजा नहीं था। लेकिन वो क्या करते थे, अहले मक्का जो थे वो एतराज करते थे, सवाल करते थे, और यहूदियों के सिखाने पर जो थे उनके सवाल होते थे, ताकि जो है वो एतराज किया जा सके। तो यहाँ पे रूह से मुराद वही इलाही है। अब आप देखें कि जो वही इलाही है क्या है, कुरान है। जिस तरह इंसान के जिस्म की जिंदगी रूह के साथ है, इसी तरह इंसान की दिल की जिंदगी जो है वो वही इलाही के साथ है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने यूं कहा कि इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता, बल्कि उस कलमे से जीता है जो अल्लाह ताला की तरफ से आता है। तो वो कलमा क्या है, अल्लाह की तरफ से जो वही नाजिल होती है। तो अहले मक्का कुरान के नजूल पर एतराज करते थे, वही के बारे में मजाक उड़ाते थे। अब ये नहीं है कि वो वही की हकीकत को समझना चाहते थे, बल्कि वो मजाक करते थे। तो यहाँ पे जो है वो उनके इसी ज़हनियत को सामने रखते हुए अल्लाह ताला कहते हैं कि जो वही है ये अल्लाह के हुक्म से आती है, मिन अम्रही मिन अम्रीना, यानी इसकी हकीकत अल्लाह ही जानता है, हर शख्स वही की हकीकत को समझ नहीं सकता। वमा ऊती तुम, और जो कुछ तुम्हें दिया गया है, मिनल इल्मी इल्मे से इल्ला कलीला, मगर वो बहुत थोड़ा है। वला इन शेना, और अगर हम चाहें, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम चाहें, ला नज़हबन्ना, तो अलबत्ता जरूर हम ले जाएं। अब आप देखें कि जहाबा का मतलब होता है जाना, लेकिन जहाबा के बाद अगर बा की प्रेपोजिशन आ जाए, हरफे जर आ जाए, तो मतलब होता है ले जाना। और यहाँ पे लनज़हबन्ना में दो ताकीद हैं, एक लाम लामे ताकीद है, एक नून पर शद है। लनज़हबन्ना, हम जरूर ब जरूर ले जाए, बिल्लज़ी साथ उस चीज के, औहैना इलैका, जो हमने वही के जरिए तुमको अता किया है। तो यहाँ पर जो है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जा रहा है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ये लोग जो आपसे रूह की हकीकत पूछते हैं, तो रूह की हकीकत अल्लाह ही बेहतर जानता है। कुरान जो सब मौजजों में से बड़ा मौजजा है, कुरान जो के अल्लाह का कलाम है, और यहाँ पर जो है इसी की हकीकत को सामने लाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि असल बात यह है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है, और जो कुछ हमने आपकी तरफ वही की है, अगर हम चाहें तो उसे ले जाएं। तुम ला तजिदु लका बिही अलैना वकीला, फिर हमारे मुकाबले में आपको कोई मददगार भी नहीं मिलेगा, कोई भी आपकी मदद करने वाला जो है वो नहीं होगा। तो यहाँ पर असल में जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि डांट का रुख आपकी तरफ है, बल्कि उन लोगों की तरफ है जो मजाक उड़ाते थे और वही की हालत और कैफियत के बारे में सवाल पूछते थे। एक तरफ अल्लाह ताला ने कहा कि वही के नाजिल होने में तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं है, तुम्हारा कोई इरादा नहीं है, तुम अपने इरादे से ना वही को ला सकते हो ना इसको रोक सकते हो। तो फरमाया, अगर मैं चाहूं तो जो वही तुम पर नाजिल की है उसे भी मैं चाहूं तो वापस ले आऊं, कोई मना नहीं कर सकता, और अगर वही तुम पर नाजिल हुई है तो ये भी हमारा फजल है, और इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारे रब का तुम्हारे ऊपर बहुत ही बड़ा जो है वो फजल है। इल्ला रहमत अमिर रब्बिक, और ये जो वही है दरअसल ये तुम्हारे रब की मेहरबानी है। इन्ना फजलहू काना अलैका कबीरा, क्योंकि आप पर अल्लाह का ये फजल बहुत बड़ा है। और यहाँ पर फजल से मुराद क्या है, वही के जो कुछ भी आपको मिला है, ये जो कुरान नाजिल हुआ है, तो ये अल्लाह का तुम पर बहुत बड़ा फजल है। तो दरअसल कुफार को सुनाया जा रहा है, क्योंकि काफिर ये कहते थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई आकर जो है सिखा पढ़ा जाता है, या कहते थे कि ये कलाम पैगंबर ने घड़ लिया है। अल्लाह ताला कह रहे नहीं, हमने अता किया है, पैगंबर की ताकत नहीं कि वो ऐसा कलाम तसनीफ करके ला सके, ना किसी और के अंदर ये ताकत है कि ऐसी मौजाना किताब को पेश कर सके। तो इसको उतारने वाले भी अल्लाह, इसको नाजिल करने वाले भी अल्लाह, और जो कुछ भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही नाजिल हुई तो फरमाया कि ये अल्लाह ही की तरफ से है, और जो है वो जितना अल्लाह ने चाहा आपको इल्म जो है वो अता किया। फिर आप देखिए आयत नंबर 88 है, इसमें जो है एक सवाल सामने रखा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, कुल कह दीजिए, लाइन इज्तमाअती, कि अगर ये जमा हो जाए। असल में जीम मीम आइन जो है इसके मानी होते हैं जमा होना, और इज्तमा का मतलब होता है कि कुछ लोगों का मुजतमे होना, इकट्ठा होना। अगर वो जमा हो जाए, कौन? अल इंसु, इंसान, वल जिन्नु, और जिन। अल्लाह यातु बिमिसली हाजा, के वो इस जैसा कुरान बना लाएं, बिमिसली हाजल कुरानी, इस जैसा कुरान बना कर ले आए। फिर आप देख लें, अता का मतलब होता है आना, और अता के बाद बाकी प्रेपोजिशन आ जाए तो लाना। तो अगर ये इंसान और जिन सब जमा होकर इस कुरान जैसा बना कर ले आए, ला यातू ना बिमिसले ही, तो इस जैसा बना कर ना ला सकेंगे। वलो काना बादहुम लिबादिन जहीरा, और अगर के बाद एक दूसरे के मददगार भी बन जाए, अगर कि वो सब मिलकर एक दूसरे की मदद क्यों ना कर लें। जैसे कुफार ये इल्जाम लगाते थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को खुद घड़ लिया है और अल्लाह का कलाम करके पेश कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कुरान एक मौजा है, कुरान अपनी जबान, अपने मजामीन, अपने दलाइल, अपनी तालीमात, अपनी गैब की खबरों के लिहाज से बेनजीर है, कोई इसकी नजीर पेश नहीं कर सकता। एक इंसान का घड़ना तो दूर की बात, तमाम दुनिया के इंसान और जिन मिलकर भी इस किताब जैसी किताब को जो है वो तसनीफ नहीं कर सकते। और अहले मक्का जो बुतों की पूजा करते थे, अगर वो सब भी मिलकर कोशिश करें तो भी नहीं हो सकता। वलौ काना बादहुम लिबादिन ज़हीरा, चाहे वो सब एक दूसरे के मददगार ही क्यों ना हो। तो ज़हीरा जो है ज़हरुन, ज़हरुन पीठ को कहते हैं, तो इसका मतलब होता है पीठ। यहाँ पे ज़हीरा के फिर माने क्या है कि किसी की पुश्त पनाही करना, किसी की मदद करना, मददगार बन जाना। तो ये लोग जो है सब मिलकर भी कोशिश करें तो एक दूसरे की मदद करें तो भी कुरान जो है उसको घड़ नहीं सकते। तो यहाँ पर जो अहले मक्का का जो एतराज था कि कहीं से कुरान आप सुन सुनाकर जो है वो आगे पेश कर देते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसकी तरदीद की है। फिर आप देखिए कि आयत नंबर 89 में, 89 में सूरत बनी इसराइल, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इजहारे अफसोस किया है कि कैसे ना शुक्रे हैं, कुरान जैसी नेमते उज्मा की ना कदरी कर रहे हैं। फरमाया, वलकद सर्रफना लिन्नासी फी हाजल कुरानी, हमने इस कुरान में लोगों को तरह तरह से समझाया, मिन कुल्ले मसालिन, हर तरह की मिसाल देकर तरह तरह से समझाया। फअबा अक्सरुन नासी इल्ला कफूरा, फअबा अक्सरुन नासी इल्ला कफूरा, मगर जो है उन्होंने क्या किया, फअबा पस इनकार किया, अक्सर उन्नासी अक्सर लोगों ने, ज्यादा लोगों ने, उन्होंने क्या कहा, इल्ला कुफूरा, उन्होंने कहा कि हम तेरी बात नहीं मानेंगे, हम तेरा इनकार करते हैं। तो अब यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक और अहम हकीकत जो है उसको बयान किया है कि कुरान मजीद जो है उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तरह तरह की मिसालें जो हैं वो पेश की हैं। सर्रफना, स्वाद रा फा, उसका मतलब होता है फेर देना, जैसे किसी चीज का रुख जो है वो तब्दील किया जाए। तसरीफ के मानी होते हैं एक हकीकत को मुख्तलिफ तरीकों से पेश करना। ये लफ्ज तसरीफ फिर रियाह के लिए भी आया, हवाओं का अदलना बदलना, कभी एक रुख की हवा कभी दो दूसरे रुख की हवा। जैसे मेरे पास पानी का इस वक्त गिलास है तो मैं उसको उल्टा कर दूं तो क्या है, रुख बदल दिया। तो सर्रफा युसर्रिफू का मतलब क्या होता है कि रुख बदल देना। तो अब यहां पर यह हकीकत बताई जा रही है कि हमने कुरान में लोगों को समझाने के लिए तरह तरह की मिसालें दी। अब आप देखें ये अकीदा ही तौहीदी है तो तरह तरह से अल्लाह ताला ने समझाया, अकीदा आखिरत है तो वो भी तरह तरह से समझाया। अब तक आप कितनी मिसालें जो है वो पढ़ चुकी हैं। तो इस किताब के अंदर एक ही बात को समझाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रंगा रंग की मिसालों का इस्तेमाल किया है। क्यों ऐसे किया? ताकि लोग जो है वो समझ सकें, ताकि लोग जो है वो इनकार कर सकें। तो दरअसल यहाँ पे ये बात जो है ये कुरान के मोजे के तौर पर जो है वो पेश की गई है कि कुरान मजीद जो है एक मोजा है कि इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक ही बात को तरह तरह से लोगों के सामने पेश किया है। मकसद क्या था? कि लोग समझ जाएं। जैसे एक टीचर है एक ही बात को बच्चों के सामने मुख्तलिफ तरीके से पेश करता है, और यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो कुरान मजीद में जो मुख्तलिफ दलाइल मजामीन आयात पैगामात अहकामात नाजिल किए हैं तो उनको मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ मिसालों से लोगों के सामने पेश किया। लेकिन लोगों का हाल क्या है? फाअबा फस अक उन्होंने इनकार किया। कितने लोगों ने? अक्सर उन्नासी, ज्यादा लोगों ने। इल्ला कुफूरा फस वो कुफर करते गए। वकालू और कहने लगे लन नोमिना लका हत्ता तफजुरा लना मिनल अर्दी यंबुआ। अब आप देखिए कि आयत नंबर 90 और 100 यानी आयत नंबर 90 से लेकर 100 तक कुफार की तरफ से बाज मोजात का मुतालबा और उनका जवाब दिया गया है, और हदायत और गुमराही के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी जो सुन्नत है उसको बयान किया है। आइए देखते हैं कि सारी बातों के बावजूद वो क्या कहते थे, जो इनकार करते थे वो किस तरह के मोजात का मुतालबा करते थे। फरमाया वकालू, और वो कहते हैं कौन? अहले मक्का इनकार करने वाले, लन नोमिना हरगिज हम ईमान नहीं लाएंगे, लका तुझ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहले मक्का कहते थे कि हम तेरी बात न मानेंगे, हम तुझ पर ईमान न लाएंगे, हत्ता तफजुरा लना मिनल अर्दी यंबुआ, जब तक तू हमारे लिए जमीन को फाड़ कर एक चश्मा जारी ना कर दे। अब आप देखिए कि यहां पर जो है यंबुआ का लफ्ज जो है इस्तेमाल किया गया है, और यंबुआ जो है इसके मानी है, इसका रूट है नून बा ऐन, और इसके मानी है चश्मे के। तो वो कहते थे कि जब तक आप जो हैं जमीन को फाड़ कर हमारे लिए चश्मा ना जारी कर दें, हम आप पर ईमान नहीं लाएंगे। एक उनका मुतालबा जो था वो ये था। दूसरा उनका मुतालबा था औ तकूना लका जन्नतुन, या तेरे लिए हो एक बाग। कैसा? मिन नखीलिन, खजूरों का। नखील का जो लफ्ज है ये बाग खेती के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसमें खजूर के दरख्त जो हैं वो कसरत से हों। तो या तेरे लिए जो है वो खजूरों का एक बाग हो, एक खेती हो। वह इनबिन, और इनब लफ्ज जो है ये अंगूरों के लिए इस्तेमाल होता है। अंगूर की बेल को भी कहते हैं और अंगूर के फल को भी कहते हैं, और अंगूर का एक दाना जो है उसको इनाबतुन कहते हैं। उनका दूसरा मुतालबा ये था कि या तो आपके लिए खजूरों का दरख्त हो, या फिर खजूरों का एक बाग हो, या फिर अंगूरों का एक बाग हो। और वो होना कैसे चाहिए? फतु फजीर अल अनहारा खिलाला तफजीरा, फतु फजीरा, बस बहा निकाले अल अनहारा नहरों को, खिलाला दरमियान इसके, खा लाम लाम दरमियान के लिए आता है, जैसे दो उंगलियों के दरमियान को भी आप कहती है ना खिलाल किया, इसी तरह दांतों में कोई चीज दो दांतों में फंस जाती है तो आप खिलाल करती है ना, तो इसी तरह किसी की मोहब्बत दिल के अंदर घुस जाए तो उसको भी खलील कहा जाता है, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का लकब था खलीलुल्लाह। तो अब उनका मुतालबा ये था कि जो खजूरों और अंगूरों का बाग हो तो उसके दरमियान में से नहरें बह रही होनी चाहिए, फतुफज्जिरा फाड़ कर निकाले, फज्जारा युफज्जिरु तफजीरन, फाड़ कर नहरें जो है वो जारी करना। और आपको पता ही है कि फजर जो है वो बड़े पैमाने पर जो है वो फोके फूटने को कहते हैं, और इसी तरह जो है वो फाड़ना जारी करना उसके लिए भी लफ्ज इस्तेमाल होता है। अरबों के यहाँ एक खूबसूरत बाग का जो तसव्वुर किया जाता था वो कैसा बाग था कि जिसके अंदर जो है वो फल लगे हुए हैं, खजूरें हैं, और साइडों पर जो है वो अंगूरों की बेलें हैं, और बीच में उनके अंदर जो है वो नहरें जारी हैं। तो अब वो क्या कर रहे हैं, ये मुतालबा कर रहे हैं, कहते हैं कि अगर आप अल्लाह के रसूल हैं तो तस्दीक के तौर पर हमारे ये मुतालबा जो है वो पूरे कर दें। ये था उनका दूसरा मुतालबा। तीसरा उनका मुतालबा था, औ तुस्कित समाअ कमा ज़अमता अलैना किसफन, औ तातिया बिल्लाहि वल मलाइकति कबीला। तीसरा मुतालबा था या ये कि आप हम पर आसमान के कुछ टुकड़े गिरा दें। तुस्किता, तुस्किता का मतलब है कि गिरा दे, सकता होता है ना गिरना, तो तुस्किता गिरा दीजिए असमाई आसमान को, कमा जामता जैसा तू जो है वो कहा करता है, जैसा तेरा दावा है, या तू आसमान को हम पर गिरा दे जैसा तेरा दावा है। कैसे गिराना, किसा फन, टुकड़े टुकड़े करके। तो यहाँ पे किसा फन लफ्ज जो है वो इस्तेमाल हुआ है, और आप देखें कि किसा फन का लफ्ज जो है ये टुकड़े के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो टुकड़े के लिए कुरान में आपने 10 लफ्ज पढ़े हैं, जैसे जुज है, पिता है, फिर बुका है, फिर दुबुर है, अनकास है, फिरका है, बाज है, मुख्तलिफ लफ्ज पढ़े हैं, और यहाँ पे किस फन है ये खास लफ्ज है, काफ सीन फा, इसकी आप वाहिद है किस फतुन, और काफ सीन फा ये जमा है, बादिल या रुई के टुकड़े को कहते हैं जो आसानी से अलहदा हो सकते हो और फिर जुड़ भी सकते हो। तो अब अहले मक्का ने ये मुतालबा किया कि या हम पर आसमान को टुकड़े टुकड़े करके हमारे ऊपर ऐसे गिरा दे जैसा का तेरा दावा है। क्या मतलब है कि हम तेरी नाफरमानी करते हैं और फिर हम नाफरमानी के नतीजे में तू आसमान को हम पर गिरा दे, यानी हम पर अजाब ले आ। फिर इसके बाद जो है अहले मक्का का एक और मुतालबा था, वो उनका क्या मुतालबा था, ये इनका जो है मुतालबा था कि औतातिया बिल्लाही वल मलाइकति कबीला, या अल्लाह और फरिश्तों को रू दर रू हमारे सामने ले आ। यहाँ पे कबीला का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, और काफ बा लाम जो होता है इसके मानी होते हैं सामने, रूबरू, जैसे किबला है, नमाज आप पढ़ती हैं किबले की तरफ रुख करके, तो किबला कहाँ पे होता है, सामने होता है ना, तो अल कबील कबीला की जमा है, वो जमात जो एक दूसरे की तरफ मतवज्जो हो, एक दूसरे के सामने हो, कबील सामने को भी कहते हैं, इसी से किबला किसे भी आप याद कर सकती हैं। तो उनका फिर एक मुतालबा ये था, अल्लाह और फरिश्तों को रू दर रू हमारे सामने ले आ। फिर आप देखें कि अल्लाह कब आता है, फरिश्ते कब आते हैं, जब कयामत होगी और हिसाब किताब के लिए अल्लाह जो है वो सामने आएगा और फरिश्ते भी आएंगे ना, सूरत अल फजर में भी है, وجاء ربك والملائكة صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. تو فرشتے کب آتے ہیں؟ اللہ کے عذاب کا فیصلہ لے کر. فرشتے کب آئیں گے؟ جب قیامت آئے گی, جب اللہ آئے گا, اللہ کا دربار لگے گا, حساب کتاب ہوگا. تو اب ان کا ایک یہ مطالبہ تھا کہ اچھا جا پھر اللہ فرشتوں کو روح در روح ہمارے سامنے لا. ویسے تو اللہ فرشتے نظر نہیں آتے نا, یہ غیب کے امور میں سے ہیں. تو اب کافر یہ مطالبہ کرنے لگے کہ اچھا پھر لے آ ان کو, گویا کہ قیامت کا مطالبہ تھا. پھر آیت نمبر 93 میں آپ دیکھیں, فرمایا او یکون لک بیتن, یا ہو تیرے لیے ایک گھر, من زخرف, زخرف کا, زے خا را فا زخرف, اور یہ سونے کو بھی زخرف کہتے ہیں کہ یہ جو ہے زخرف خوبصورتی کا ذریعہ بنتا ہے. اس کے علاوہ زخرف لفظ جو ہے اس سے مراد وہ زینت ہوتی ہے جو ملمہ کاری سے حاصل ہوتی ہے. جیسے کسی بھی چیز کی زیبائش کے لیے زخرف کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. جیسے کسی چیز کا چمکنا, کسی چیز کا جو ہے وہ اس کا آرائش کا ہونا, اس کا خوبصورت ہونا, تو اس کے لیے بھی زخرف کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو زخرف کے پھر یہاں پر کیا معنی ہے؟ سونے کے, کہ یا ہو تمہارے لیے ایک گھر اور وہ گھر بھی زخرف کا ہونا چاہیے, سونے کا ہونا چاہیے. اب آپ ذرا غور کریں کہ اہل مکہ جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستاتے تھے, کیسی کیسی باتیں کرتے تھے. تو زخرف کیا ہے؟ ظاہری سجاوٹ, ملمہ سازی. زخرف القولی غرورا, آپ نے پیچھے پڑھا تھا نا, یو ہی باد ہوملا باد ان زخرف القولی غرورا. ملمہ کی بھی جو باتیں ہوتی ہیں, ملمہ سازی والی باتیں, اس کے لیے بھی آتا ہے. یہ پودوں کے جو رنگ ہوتے ہیں نا, خوبصورت پودوں کے جو رنگ ہوتے ہیں, روپ ہوتا ہے, جو بہار اس پر آئی ہوئی ہوتی ہے, اس کو بھی زخرف کہا جاتا ہے. اسی طرح سونے کے لیے بھی یہ لفظ جو ہے استعمال کیا جاتا ہے. تو کہنے لگے تیرے لیے سونے کا ایک گھر ہونا چاہیے, او ترقا فی السما, یا تو آسمان پر چڑھ جائے. اب یہاں پر جو ہے ترقا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے, روٹ ہے را قاف یا, اور اس کے معنی ہوتے ہیں بلندی پر چڑھنا, سیڑھی چڑھنا. تو اب یہاں پہ یہ ایک اور مطالبہ ہے کہ یا پھر آپ جو ہیں وہ آسمان پر ہمیں چڑھ کر دکھائیں, یا آپ جو ہیں ہمیں بلندی پر چڑھ کر دکھائیں. تو یہ بھی ایک انہونی بات تھی جو وہ مطالبہ جو تھے وہ کر رہے تھے. تو جب کوئی بات نہ ماننی ہو, جب انکار ہی کسی کی روش بن جائے, تو پھر اس طرح کے مطالبے جو ہیں وہ ہوا ہی کرتے ہیں. اور اہل مکہ کے یہ عجیب و غریب مطالبات تھے, اور یہ سارے مطالبات جو تھے یہ معجزے کے لیے تھے کہ آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں گے تو پھر ہم آپ پر جو ہے وہ ایمان لائیں گے. پھر فرمایا ولن نومنا, اور ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے, یہ رقیے کا, آپ کے چڑھنے کا, کہ اگر آپ جو ہیں آسمان پر چڑھ بھی جاتے ہیں تب بھی ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے. کب تک؟ حتی تنزل علینا کتابا نقرؤہ, جب تک تو ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر نہ اتار لائے جسے ہم پڑھیں. یعنی جب آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور وہاں پہ, تب بھی ہم مانیں گے نہیں. چڑھنے کے بعد پھر کیا کرنا؟ ہمارے لیے آسمان سے ایک چٹھی لانا, ایک لکھی ہوئی تحریر لانا, تو پھر ہم مانیں گے کہ واقعی تو اللہ کا رسول ہے. اور اس تحریر میں یہ لکھا ہونا چاہیے اللہ تعالی کی طرف سے کہ یہ میرا رسول ہے, اور اے اہل مکہ تم اس پر ایمان لے آؤ. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه، کہ آپ ہمارے لیے اوپر جا کر ایک ایسی تحریر لائیں جسے ہم پڑھیں، یعنی ہمارے نام اللہ کی طرف سے یہ بات ہونی چاہیے کہ میرا رسول ہے، اس پر ایمان لے آؤ. قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، پاک ہے میرا پروردگار، کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں؟ تو یہاں پر جو ہے کیا بات بتائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر کا کام جو ہے وہ معجزات جو ہے معجزات دکھانا نہیں ہے، لوگوں کے معجزات کا جو مطالبہ ہے ان کو پورا کرنا نہیں ہے. تو آیت نمبر 90 سے لے کر اب آپ دیکھیں کہ 93 تک ان کے ایک طرف معجزات ہیں، ان کا مطالبہ ہے، اور دوسری طرف جو ہے اللہ رب العزت نے لمبے چوڑے مطالبوں کا بس ایک مختصر سا جواب دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ قل سبحان ربی هل كنت الا بشر الرسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، پاک ہے میرا پروردگار، کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں؟ تو اس کے معنی کیا ہے کہ میں بس ایک رسول ہوں، تمہارے جو معجزات کا مطالبہ ہے میں اس کو پورا نہیں کر سکتا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.